কাঁড়েম আছে হাতে হাতে দাজিগ্রাম, দাজিগ্রাম করকে কাটোয়া, কাটোয়া হো করকে ভ্রমণ করতে 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 ওখান পর বড়গাছি, বড়গাছি
ওই
দুগাছিয়া, দুগাছিয়া বড়গাছিয়া অত গঙ্গাজিকে উত্তর পূর্বস্তরীকে আগে সমস্ত ভ্রমণ করতে 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 নিত্যানন্দ প্রভু সে কাহা পৌঁছে কালনা, অম্বিকা কালনা ইয়া সতী মাতা সে মিললাম, মিল করকে কালনা পৌঁছে উহাঁ পর গৌরদাসজিকে পণ্ডিত জিকে ঘরমে যা পর পেলে গৌর নিত্যানন্দ প্রভুকে লীলার থি কেছে দোনো গৌরদাস পণ্ডিত জিকে নিমন্ত্রণ মাননে কে গে। জব নিমন্ত্রণ মে গে বহু সেবা কি গৌরদাস পণ্ডিত জি নিতনে সেবা কি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু উহাঁ পর আনে লাগে তো আজ নেই কাল করতে করতে এক হপ্তাহ পনেরো দিন এক মহিনা হো গিয়া আনে নেই যে আর বলে আপ তো জানে দুঙ্গা নেই বলে এটা বড় মুশকিল হয়ে গেছে উস সময় আঙন মে উহাঁ পর দো নিম কা পেড় থা সুন্দর আবি সুন্দর নিম কা পেড় এক সাথে জৌয়া পেড় তো বলে দেখো আমি জানে নেই ডুবে তো দো মূর্তি বানাও ইয়ে মূর্তি কি হ্যাঁ প্রতিষ্ঠা করকে আম চলে যাইনি তোমার বলা মূর্তি বানাও বড়াই কে বুলাইয়া বড়াই কে মূর্তি বানায়গা মূর্তি আপনা আপ বন করকে তৈয়ার হবে কেউ মহাপ্রভু জানে কা থা হাত কি হাত মূর্তি তৈয়ার হবে বড়াই আশ্চর্যচকিত হবে ক্যা বাত হ্যাঁ মানে মূর্তি কে বানাও কি মূর্তি ইসকে অন্দর তৈয়ার মূর্তি হে বাকি ছিড়কা কেবল উঠা নেওয়া বাকি রয়ে গে আব ও বলতে ঠিক আছে মূর্তি কি সেবা করনা বলে মে মূর্তি টুর্তি সেবা নেই করতে মে তো খুদ আপকি সেবা করুঙ্গা বলে মেরি সেবা করে যা দোনো বেঠ গে আর মূর্তি দোনো চল দিয়ে তো চল দিয়ে তো আচ্ছা মুঝে বেঁকা করকে আপ যা রে গঙ্গা তক নৌকা আমি চলেঙ্গে ইয়ে নেই হোক মে যা রা আপ লোক আইয়ে হাত পকড়ে লে আই ও লাই থেকে দোনো চল দিয়ে মহা ও বড়া শুক্র পর ক্যা করু কোন আসল হ্যাঁ কোন নকল হ্যাঁ ক্যা করু আর জিসকো লে যায় ওই রে যায় ও চল দে যে মূর্তি বন যায় কই ঠিক নেই কর পায় বহুত বার কে বাদ মে গৌরদাস পণ্ডিত জি কো সমঝা করে বলে তুমি মেরি সেবা করেগা মে সেবা স্বীকার করুঙ্গা সব তরহ সে কিন্তু রহুঙ্গা মূর্তি মূর্তি হোকে তোমার তো মূর্তি কে রূপ মে ও বিরাজমান হোগে ও উনকা শয়ন ভোজন সফন সব কুছ করতে উনকে সাথ মিলা কি যাব তো আগে আপ ক্যা করতে হ্যাঁ উহাঁ পর ফির দোবারা জব আমার নিত্যানন্দ কো পৌঁছতে কীর্তন কে সাথ নম্বর চাকাল নামে জব পৌঁছতে হ্যাঁ উহাঁ ক্যা দেখতে হ্যাঁ সূর্যদাস পণ্ডিত জি কে দো কন্যা উসে বড়া কন্যা তো সর্পদংশন সব সাঁপনে কাটো তো ও উস সময় মর গে এটা লীলা দেখা আর কাহা ঘাট মে চিতা জ্বালা দিয়া সজায়া চিতা মে চড়া দিয়া সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উহাঁ পৌঁছে দুঃখী হো করকে তো নিত্যানন্দ বলে আরে ক্যা হো রা হ্যায় কিসে সব লোক ইয়া দেখা দেখার কে বলে কোন হ্যায় ইনকে কন্যা কব হাত উঠে তো লকড়ি হটায় ফটা করে দেখা আরে কে সো রই হ্যায় উঠো হাত পকড় লিয়া তো উঠে তো বলে আব হাত তো পকড় লিয়া আব আপকে সাথে চলুঙ্গি তো ছোটি আলি বলতি হ্যাঁ মে ভি চলুঙ্গি হ্যাঁ ওই বলে মে ভি চলুঙ্গি ও সূর্যদাস পণ্ডিত দেখতে নেই গে কি ক্যা হো রা আর দোনো লড়কি কো হাত মে পকড় কর কন্যাও কো ইয়ে চল দিয়ে অবধূত দোনো চল দিয়ে সাথ মে কাহাঁ গে আদিশক্ত ব্রাহ্মণ তোমার জাগার রাজা কো পুছতে মহারাজ আমার লে কো জাগা দো ইয়ে বলে ইয়ে ক্যা কর অবধূত পাগল কো দো লড়কি কিসনে দি ইতনা সুন্দরী লড়কি আর কিসনে দে দি পাগল কো হ্যাঁ কুছ তো হ্যাঁ নেই জ্ঞান ঘর নেই মকান নেই খানে কো নেই পেহনে কো নেই তো ও মজা করকে বলা রাজা নেই বলে মেরে রাজা নেই কো জাগা দো বলে যা ও ঝিল মে ঝিল মে রহো ঝিল মানে তো কুন্ড মানে তো আমার দেশ মে লেক ইংরেজি মে লেক বলতে আমার দেশ ঝিল বলতে বিল আর বাংলা বলতে বিল মানে বহু বড় ভারী জলাশয় বিচ মে জঙ্গল মঙ্গল হো গেয়া হ্যাঁ আর শের ভালু চিটা ইয়া লোমড়ি ইয়া মগরমচ্ছ ইয়ে সব সাঁপ হোক আড্ডা খানা দেখা দিয়ে উদার আচ্ছা উহায় ঠিক চল দিয়ে মানু কিনারে যা করিয়ে এ খড় অর্থাৎ ধান কাজও ঘুষ ওঠায় উঠায় ওটা করে ফেঁক দিয়া ফেঁক দিয়ে তো ক্যা হো গেয়া বিশাল অট্টালিকা এস অট্টালিকা রাজপ্রসাদ ক্যা উৎসে বড় করকে और पुष्पा चंद्र को हाथ पकड़ करके राजभवन में प्रवेश की और उसका नाम हो गया खड़दह। दह मतलब कुंड और खड़ भेजा था पूछा था तो खड़दह नाम हो गया। इतना बड़ा भारी सुंदर और राजप्रसाद तैयार हो गया। नित्यानंद को बुझा कर प्रवेश किया। सूर्य देव पंडित पूछ सोचते हैं लड़कियों को लेके तो गया, गया कहाँ? देखता हूँ। राजा से पूछा आके, राजा उनके पुरोहित है सूर्य देव पंडित गौरीदास पंडित। तो राजा को पूछते हैं हमारे एक दोनों लड़की के साथ कोई आया आपके पास? है आया था, मुझसे कुछ जगह मांगा था। मैंने तो हंसी मजाक में बोल दिया आपके लड़की में जानता नहीं था, नहीं तो मैं कोई भवन में कोई महल दे देता। मैंने तो कह दिया वहाँ। तो बोले अच्छा चलो तो देखो तो क्या है। जाके क्या देखते हैं? नौकर चाकर दास दासी घर मकान सुंदर बागान फूलों की और कीर्तन चल रहा है। बोलते जन्नवा बड़ा खुश। सूर्यदास पंडित गए, अरे कुछ दिन के लिए तो चल मेरे यहाँ। तो बोले किस लिए? आपके आना तो यहाँ आ जाओ आप, जहाँ पर नित्य हरि मंदिर है कीर्तन हो रहा है सेवा चल रहा है, हमको जाए नित्यन बधूत वहां से उनका और दिव्य प्रकाश शुरू हुआ। अब यहाँ से बीरचंद्र प्रभु वहाँ आविर्भूत हुए और बुद्ध चंद्रबा वहाँ रहे। वो भी अपना संकीर्तन धर्म में और प्रचार प्रसार में सब समय रहते।
वसुधा जी तो कोई संतान नहीं है?
नहीं बुद्ध जी संतान है, जानवा माता के संतान नहीं है।
बीरचंद्र
तब कुछ कुछ लोग बोलते हैं कन्या भी थे गंगा देवी, किंतु हम लोग कभी सुने नहीं। हमारे प्रभुपाद या गुरुवर्ग मानते नहीं, किंतु सहजिया लोग मानते हैं गंगा देवी नाम का कोई कन्या थी और उनके संतान अभी नित्यानंद वंश चल रहा है ऐसा सुनते हैं।
ये गंगा माता
वो गंगा माता
अलग है,
गंगा माता गोस्वा में नहीं वो अलग है, वो कृष्ण प्रिया देवी वो गंगा माता गोस्वा में हम जानते हैं। खुला नहीं
बैठो।
तो क्या होता है इसके बाद में? हमारा नित्यानंद को प्रचार शुरू कर दी और दिन रात प्रचार प्रसार में जाते हैं, किंतु प्रत्येक वर्ष सब भक्तों को लेकर के कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी। चार महीना चातुर्मास करके फिर आते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लीला वहाँ से नित्यानंद को प्रचार शुरू कर दी। सब भक्तों को एकत्रित करना और जिस जब लोग एकत्रित करना शिवानंद सेन के साथ में लेकर के और यहाँ पर नित्यानंद को कीर्तन करते 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 थे। जब पानीहाटी ग्राम में आए वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी आए मिले। तो कुछ कुछ लोगों का आजकल कहना है बड़े बुरी तरह से एक लांछन शब्द सुनते सुनने को मिलता है और ये आजकल परंपरा भी देखता हूँ चल गया है लोगों की। क्या बोलते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जी को पाना चाहते हैं किंतु नित्यानंद प्रभु की अवज्ञा करके महाप्रभु जी को पाना चाहते हैं, ये कभी पा सकते हैं? ऐसे संभव नहीं है, ऐसा लांछन लगाते
हमारे भी कुछ लोग
ऐसा बोलते हैं। विशेषकर हमारे और आचार्य लोग भाभी आचार्य जो वर्तमान बन रहे वो लोग इस बात को कीर्तन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु को छोड़ करके महाप्रभु से मिलना चाहते थे, इससे नहीं मिल पाए इसे नित्यानंद प्रभु ने दंड दे दी और दंडीभूत होकर के सब नित्यानंद प्रभु कृपा पा करके महाप्रभु जी को पाया। किंतु इस बात की विचार यदि करा जाए तो या तो रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राकृत माना या रघुनाथ दास गोस्वामी कभी नित्यानंद प्रभु की सब समय अवज्ञा किया होगा। किंतु जब पहले संन्यास ली महाप्रभु शांतिपुर में आए नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु थे वहां मौजूद, रघुनाथ दास गोस्वामी वहां महाप्रभु से शांतिपुर में मिले थे, वहां महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया फिर या घर जाओ नहाओ बातुल क्रम क्रम पाए लोग भवसिंधु कुल मरकर वैराग्य ना कर लोग देखाइया यथाजोग्य विषय गुंज अनासक्त होइया। ये महापुरुष ने आदेश दी थी। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु नहीं थे क्या? और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं किया? बचपन से जो हरिदास ठाकुर इकबाल पात्र जुदुनंदन आचार्य कुलगुरु और जो नित्यानंद प्रभु के ही आश्रित तो जो नित्यानंद प्रभु के आश्रित जुदुनंदन आचार्य और उनके शिष्य बलराम प्रभु जो उनके घर के कुल पुरोहित इन लोगों की कृपा पाकर के और नित्यानंद प्रभु के प्रति उनके श्रद्धा नहीं वो जानते नहीं थे। किंतु आजकल ऐसे बात चल गया कि वो नित्यानंद प्रभु छोड़ करके और महाप्रभु जी को पाना चाहते थे इसलिए पाए नहीं किंतु नहीं वो जानते थे तभी तो नित्यानंद प्रभु के साथ आए, नहीं तो आते ही क्यों बताओ। यदि नित्यानंद प्रभु को जानते नहीं और उनको छोड़ करके महाप्रभु जी को पाना चाहते थे तो इनके पास आए क्यों? क्योंकि ये सब एक परंपरा के आजकल नहीं नहीं कितने नई नई बातें चल गया। तो नित्यानंद प्रभु के जगह निकट जब आए पानीहाटी में, नित्यानंद प्रभु जी ने क्या कहा? दूर से दंडवत किया, उनके सेवक बताते नित्यानंद प्रभु के रघुनाथ दंडवत कर रहे हैं। देखो तो यदि नहीं जानते तो ये बात क्यों कहते रघुनाथ दंडवत कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु यदि नहीं जानते उनको, उनसे परिचय नहीं होता, मिलते नहीं तो सब बात बात में तो हो जाता है। तब वो बोले आए तो राय आओ इधर आओ बुलाया, और जैसे आए नित्यानंद प्रभु ने कृपा पूर्वक उनके मस्तक पर दोनों चरणों को रख दिया, कृपा किया, बोले आए तुमको आज दंड दूंगा। अब इस दंड के बारे में महाराज जी ने वहाँ राज दामोदर मंदिर में बहुत सुंदर व्याख्या किया, बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत व्याख्या किया। अब मैं भी कुछ दिन पहले यहाँ क्लास में बोला था तो उनको दंड दिया, और दंड के क्या बोला जब सब वैष्णव की सेवा करो, सब वैष्णव की कुछ इंदों को उत्सव दो, कुछ खिलाओ पिलाओ। अब नित्यानंद प्रभु संकीर्तन के साथ में वहाँ पर बैठे हैं, और रघुनाथ दास गोसाई बहुत प्रसन्न, और सब लोगों को दधी चीला महोत्सव शुरू कर दी। और ऐसा दधी चीला महोत्सव किया जिसमें जो बेचने आए वो भी पत्थर लेकर के बैठ गए, जगह नहीं है गंगा पानी के अंदर खड़े हुए, और चिड़वा को कुछ तो पानी में धोकर के दही के साथ तीन चंपा केला और घी और कपूर नारियल मधु और संदेश इसके साथ दिया, कुछ दूध में भिजो है और उसमें घृत और चीनी और क्या नाम है संदेश अलग अलग दिया, फलों के साथ में विभिन्न प्रकार फल, दूध वाले में फल और आम का कटहल विभिन्न प्रकार के सब आम का रस कटहल का रस तो कभी खाए नहीं तो जीवन में याद रहता कैसा होता है उसका रस,
बहुत बढ़िया।
तो उसके साथ में दे दिया
कटहल का रस,
अब बस सब लोग प्रसाद प्रसन्न हो गए और सब लोगों ने रघुनाथ दर्शन को कृपा किया। ऐसे बोलते हैं प्रसाद पाकर के जब सागर पंडित आ गए, ये क्या कर दिया आपने हमारे घर में, मैंने दोपहर के प्रसाद सब तैयार कर दी और आप गंगा स्नान करने आकर के ये यहाँ पर क्या वनभोजन शुरू कर दी, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं। राघव पंडित प्रभु बोले नित्यानंद प्रभु ने शाम को होगा, और नित्यानंद प्रभु क्या किया सब वैष्णव को देख रहे हैं सबको पत्थर मिला कि नहीं, प्रसाद मिला कि नहीं, घूमे सबको दो दो मिला कि नहीं, और नित्यानंद प्रभु ने अपने दाहिने तरफ एक आसन रख दी वहाँ पर भोग लगा दिया, और सब लोगों के यहाँ गए सबके मिट्टी के जो हणिया में प्रसाद दिया उसमें एक एक मुट्ठी ले रहे हैं, और क्या करना है कोई नहीं जानता है, ले रहे हैं खाली हाथ, ऐसा लग रहा है किसी को खिला रहे हैं, कौन है साथ में महापुरुष जी स्वयं सच्चा रूप में वहाँ मौजूद थे और एक मुट्ठी खिला रहे हैं, सबसे लेकर के सबसे लेकर नित्यानंद प्रभु ने खिलाया। और जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं प्रसाद पाते हैं तो बैठेगा नहीं, और पास में जो ओलना रख दी उसमें से लेकर के नित्यानंद प्रभु और महापुरुष जी समर्पण किया, अपने आप से खिलाया। देखा क्या हणिया खाली है, कौन देख रहा है? रघुनाथ दर्शन देख रहे हैं, राघव पंडित देख रहे हैं, शिवानंद सिंह देख रहे हैं, ऐसे विभिन्न विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों ने देखा नित्यानंद प्रभु महापुरुष जी को प्रसाद खिला दिया, थोड़ा रह गया नित्यानंद प्रभु जी प्रसाद पाया, हरिबोल कहकर के सब भक्तों को बांटा, सब भक्त पाए बड़े आनंद से और उत्कृष्ट प्रसाद रघुनाथ दर्शन को दे दी। तब क्या हुआ, अब लेकर रघुनाथ दास स्वामी शाम को राघव पंडित भवन में गए, नित्यानंद प्रभु गए, कृत्य नित्य हुआ, महाप्रसाद सुंदर हुआ। दूसरे दिन सुबह रघुनाथ दास स्वामी विदाई लेकर आने लगे, क्या किया राघव पंडित को पूछा आप किसको कितना दक्षिणा देना है, अब आप निर्णय कीजिए। उन्होंने चिट्ठा बांध दी, इनको इतना देना है, इनको इतना देना है, इनको इतना देना है, और नित्यानंद प्रभु जो लेंगे नहीं तो उनके जो भंडारी है, भंडारी के हाथ में कितना स्वर्ण मुद्रा उनके हाथ में दे दी, और सब भक्तों के नाम में लिस्ट करके राघव पंडित के पास दे करके उसी दिन नित्यानंद प्रभु के विदाई। क्या बोल रहे हैं आप, ये कृपा कीजिए मेरे को विषय रूपी, अब नित्यानंद प्रभु बोल रहे अपने आप ही तुम्हारा अब विषय तुम्हारा छूटा, अब तुम महाप्रभु के साथ मिल सकते, विषय मिथ्या गत से हमारा अब विषय का बंधन टूट जाएगा। अब यदि नित्यानंद बोध जो अपनी सेवा कराते ऐसा नहीं, सब वैष्णव लोग वहां मौजूद थे, सब वैष्णव की सेवा में लगा दी, सब वैष्णव की सेवा में लगा करके अब नित्यानंद बोध वहां से चल दिए, चलते 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 कहाँ पहुंचे, एक वो भक्त थे रामचंद्र खान राजा, और राज दरबार में आते आते रात समय होकर शाम हो गया, तो बोले जाओ राजा से पूछो हम लोग आए हैं संकीर्तन के साथ में, हम लोगों के लिए कुछ काम दे दे। रामचंद्र खान के यहाँ गए, जब गए तो बोलते अरे साधु के लिए स्थान, साधु के लिए तो गौशाला उत्तम स्थान है, क्यों साधु को प्रिय है गौ, उनके जो कृष्ण है वो गायों को सेवा करते हैं, गायों को प्यारा है, गौशाला में रहो, चोंडी मंडप में नहीं रहेंगे, चोंडी मंडप पवित्र स्थान है। नित्यानंद को बिगड़ गया, अच्छा मेरे लिए गौशाला है ठीक है, मेरे लिए तेरे यहाँ स्थान नहीं है, ओ मृत्यु के लिए स्थान है, अब आएगा मृत्यु ही रहेंगे, क्या करें, नित्यानंद को तो चल दिए। अब क्या होता है, ऊपर कुछ दिनों में ही जवनों का राज्य उठाई, मुसलमान लोग आए और करके बहाना करके गांव को तो उजाड़ दिया, और क्या कर दिया बिल्कुल तस नस करके सर्वनाश करके गाय काट करके वहां पर रस्सी बनाया, स्त्रियों को लूट ले लिया, धन संपत्ति ले लिया और उनका सर्वनाश करके गांव से चला, इसलिए उनका अपराध था कहां, पहले हरिदास ठाकुर के प्रति और फिर आकर के पहुंचे कहां, नित्यानंद के प्रति अभिज्ञा। इसलिए इसके बाद में क्या होता है, बचपन में और महाप्रभु के साथ जब मिले थे तो महाप्रभु ने आदेश दी थी, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास हमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश, घर घर जाओ और मांगो ये शिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, या बोई ना बोलीबा आर ना बोलाइबा दीबा अवसने आसी हमारे कहिबा। तो नित्यानंद भज ठाकुर दोनों जाते हैं रोज दिन, तो बोलते देखो सबको तो कृष्ण नाम करवाया, ये दोनों को यदि नहीं कराया ये उपयुक्त है सबसे बड़ा बारी शहर का मातवा कोतवाल, ये दोनों उपयुक्त है, ये दोनों यदि हरिनाम किया तो मैं समझूंगा तुम्हारे महाप्रभु जी की वशिष्ठ बलि जाएगी, ये दोनों नित्यानंद दोनों निर्भीक गए, हरे कृष्ण बोलो हरि बोल बोलो के रे और उठा मारने के लिए और हरिदास ठाकुर मोटे दर्जे चल नहीं पाते हाँप गए चल नहीं पा रहे, नित्यानंद वो पतला दुबला दो कूद करके लाभ कदम इधर से उधर गली से होकर जिधर जिधर भाग गए। हरिदास ठाकुर आकर नित्यानंद प्रभु को बोलने प्रभु आज तो प्राण बचा, कैसे न जाने प्राण बचा, और क्यों अरे मरते मरते बची क्यों, अरे दो पियक्कड़ के पास गए और पियक्कड़ मारने के लिए उठे, ये तो भाग गया दुबला पतला, मैं तो मोटा सोटा चल नहीं पा रहा हूँ, देखो मेरा सांस फूल गया, अरे पकड़ ही नहीं थे ना जाने कैसे कैसे बच गया, बोले देखो वो दोनों पियक्कड़ है और ये दोनों और पियक्कड़ है, काल देखना दोनों चारों पियक्कड़ एक साथ में मिल करके ऐसे पियेंगे और एक साथ में पी करके मतवाला होकर ऐसे ही नित्य करेंगे। वो बोले क्यों मेरे को और बेहतर है, मैं नहीं समझ पाता हूँ आपकी लीला, ठीक दूसरे दिन बस ऐसा बोले चलो जबरदस्ती ले गए नीचे और नीचे के साथ में जाना पड़ेगा महापुर का आदेश, गए तो क्या किया ऐसे मारा पकड़ दी, मारा तो इंसान क्या बोल रहे अभी तो एक बार कृष्णाम तो करो, माधव बोलते भाई ये परदेशी है साधु सन्यासी है तूने क्यों मारा भाई, मत मारो महाप्रभु को, महाप्रभु जी भागे चक्र चक्र करने लगी किंतु चक्र को नित्यानंद ने पकड़ लिया, एवं अस्त्र ना धोर लो प्राण कार्य ना मार लो, आपने प्रतिज्ञा किया और अस्त्र धारण नहीं करूंगा मारूंगा नहीं किसी को, चक्र को वापिस कर दी, अब प्रेम से इनको सुधारना है बस। तो बोलते अच्छा माधव तूने हमें सही को बचाया, उनको आलिंगन किया, वो प्रेम से रोने लग गए सर बस हरि बोल कृष्ण कीर्तन करने लगे नाचने लगे, तो जगह बोलते बारे एक साथ में दोनों सारा जीवन रहा अब इनको तो इतना कृपा किया और मैं दोषी बन गया, मेरे को कृपा नहीं मिलेगी। घर पकड़ लिया महाप्रभु की, महाप्रभु बोलते नहीं, पाए कांटा फूट लेगी, कंधे बाहर आए हैं, पैर में कांटा कड़ गया तो काम तो कंधे में निकलेगा, जाओ जहाँ अपराध किया वहाँ जाओ, जाकर नित्यानंद को चरण पकड़ लिया। परम दयाल नित्यानंद, नित्यानंद को परम दयाल, उन्हें क्या कर दी, कैसे क्षमा किया, उठा लिया कले में लगा दिया, देख करके महापुरुष जी ने को भी प्रेम किया। इस प्रकार से जबकि नित्यानंद को समस्त विचरण करते करते देश भ्रमण करने लगे, ऐसा जगह देश उन्हें छोड़ा नहीं जहाँ पहुंचे नहीं, करते 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 आखिर में जानना बाबू सुधा ने कहा एक बार हम आपके पूर्वाश्रम देखना चाहते हैं, हम लोगों को लेके चलो। किन्तु वहां पर कौन है, नित्यानंद जाने के बाद में विरह में सब करीब उजाड़ हो गया। वहां गए जाकर के बोसुदा जानना बा वहां पर बंकिम राय की प्रतीक्षा थी, वहां सेवा पूजा करती और सब भक्त वहां एकत्रित हुए। नित्यानंद को आवेश हो गए कीर्तन करते करते एक दिन बंकी में आकर जाकर के आलिंगन कर ली और आए नहीं। फिर वसुदा को छोड़ करके जानना माता वृंदावन आई, वृंदावन आकर के वृंदावन में रूप को विराज को दंडीभूत किया और वैष्णव जगत की फिर दोबारा उत्साह के साथ में प्रचार प्रसार शुरू कर दी। इस प्रकार से और खेतरी में गए नरोत्तम ठाकुर जी के यहाँ विभिन्न प्रचार प्रसार किया। काल सुनेंगे बोलो नित्यानंद प्रभु शुभ आविर्भाव तिथि की हराय पंडित पद्मावती देवी की गौतम
एक क्षेत्र नाम को कोई वो है ना तो
है बोल बचाल ऐसे बारे में आलोचना करते हैं तब देखते हैं हमारे शुभ आचार्य या महाजनों ने क्या किया। सनातन गोस्वामी शुरू से शिव जी से उनका मित्र था, बहुत प्रेम है, इतना प्रेम है कहीं भी रहते तो जरूर वो दिन में शिव जी के दर्शन करे ही आते, जहाँ शिव जी नहीं है वहाँ नहीं रहते। कैसे काम बंद में रहा करते सनातन गोस्वामी तो कामेश्वर महादेव जी के मित्र, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव और पवन सरोवर में, गोवर्धन में सकलेश्वर महादेव उनके नजदीक है और वहाँ पर गोकुल में वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ भी शिव जी के मंदिर है तो मैं नाम तो मुझे पता नहीं होगा, वहाँ भी शिव जी के मंदिर। तो शुरू से इनका शिव जी से बड़ा मित्रता है और सनातन गोस्वामी को बतलाया संबंध के अधिष्ठा के देवता जो मदन मोहन के प्रकाशक अर्थात सनातन गोस्वामी की कृपा से संबंध ज्ञान उदित होता है और जल तत्व के प्रति जो आसक्ति ममता मन और शरीर ये प्रति पुष्ट या ज्ञान हो जाता है अर्थात आत्म तत्व की उपलब्धि और परमात्मा के साथ संबंध ज्ञान जो युक्त होते हैं। इसलिए शिव जी के साथ परम मित्र था, जब चक्रस्थान में रहते थे तो हमने सुना तब से घर में कि उनको रात भर भजन करते जो उनको मच्छर लगता तो बोलते आप यहाँ नहीं रहूंगा। तो शिव जी क्या बोले, बोले प्रभु आप मुझे छोड़ के मत जाओ, अब आपको मच्छर लगेगा नहीं, ये तो साधारण से कथा है, क्यों छोड़ के मत जाओ, ये जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मुझे तंग नहीं करते, मेरे पास जगत के विभूति और वैभव नहीं मांगते, सभी लोग मुझसे दुनियादारी के बुद्धि मांग करके मुझे प्रसन्न तो करते नहीं, ले जाए तो अच्छा ही है बवाल लेके चले जाए, क्योंकि मैं ऐसे कोई व्यक्ति नहीं देखा जिससे कि मैं हृदय की बात कहूँ और सुनूं कोई मुझे अपना कुछ किसी संतुष्टजनक सेवा की भावना लेकर के कोई मेरे पास आए हो। तो उनकी सिद्धि की सेवा क्या है, तब शिव जी बोलते हैं जगत में प्रभु ने भेजा इस मायामय जगत में, यहाँ पर मेरे को किसी एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा कि मेरे मित्र और मेरे साथी बने, सब लोग मुझसे अलग रहना चाहते हैं, सब बीच मांग लेकर के अलग अलग होकर के जहाँ तहाँ अपना अपना स्थान बना लेते हैं और जब उस बीच से जल के मरते हैं
पति शिव जी को दोष देते हैं, फिर आगे उनसे मांगते हैं। सब समय ये लोग ऐसे खत्म खुद ही तंग करते तंग आ जाते, ऐसा कोई व्यक्ति तो मिला नहीं तो आप मुझे छोड़ के मत जाना। तब शिव जी शिव ठाकुर की महिमा हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने थोड़ा बहुत ब्रजविलासपुर में वर्णन किया, तो उनके अनुजाई गौड़ीय वैष्णवों की विचारधारा में हम लोग प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रजविलासपुर में बतलाया 41 या 42 नंबर श्लोक में कि यदि कोई ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं, बद्ध जी भी ब्रज प्रेम चाहते हैं, तो निश्चित रूप में गोपेश्वर महादेव जी की आराधना करें और गोपेश्वर महादेव संतुष्ट हो जाए उनको ब्रजवास या तो ब्रज प्रेम देने में समर्थवान हो, ये बात उन्होंने कही। तो इस बातों को लेकर के मैंने महाराज जी के साथ और वैष्णव के साथ बड़ा बाद विसंवाद भी देखा। बाद में सब लोग देखा महाराज जी चरणों में झुक गए, हार गए। श्रेष्ठ कहे जाने वाले बड़े बड़े आचार्य भी बहुत विचार है इसमें, चित्त तो बड़ा गहन तक है। भक्तों को समझना, भगवान को तो समझ लेगा, भक्तों को समझ लेना बड़ा कठिन है। वो कहां किस रूप में कैसे विराजमान है तो बताते हैं शिव जी भगवान की गुण महिमा लीला कीर्तन करने में भी बड़ा तत्पर है, बड़े चपल और चतुर है। जैसे उदाहरण स्वरूप पार्वती के निकट उन्होंने अष्टयाम साधन शिव जी ने सबसे पहले कीर्तन किया, इसके बाद वो सब चीज जगत में आविर्भूत हुए। यही नहीं भगवत महिमा सूचक समस्त कीर्तन शिव जी करते हैं और उपदेश देते हैं। यहाँ तो कहते हैं शिव जी यदि भक्तों के साथ किसी का देश हो गया, विरोध हो गया, तो व्यक्ति का निश्चित रूप से संसार दशा होगा, उसको बचाने वाला कोई दुनिया में नहीं है। शब्दन भी करते हैं इसलिए पार्वती तुम इस के साथ क्यों तुमने व्याख्यान ली, ये तुम्हारा सर्वनाश के कारण तुमने कर लिया। उससे क्या हो गया, कुछ दिनों में पार्वती का अपमान हो गया, तो सीता जी का रूप बना करके राम के निकट जा करके परीक्षा देने गई, किंतु राम को परीक्षा करने गई और जाकर के शिव जी ने सजा फेंक दी थी। उसके कारण शिव जी को क्या करना पड़ा, देवी जी के साथ ऐसे व्यवहार हो गया जैसे शिष्य या माँ के साथ व्यवहार होता है। पर वो पति दुखी हो गई, दुखी होकर के भीतर में आग की तरह जल रहा है और इधर पिताजी जिद कर रहे हैं मैं चली जाऊं, क्यों यह तो मन शांत नहीं, वहां जाकर के यदि पिताजी मुझे सब लोग बहनों से मिलने से मैं भूल जाऊं थोड़ा, वहां गए वहां जी शिव जी की निंदा की। तो बोलते हैं एक सूखी लकड़ी दूसरे लकड़ी से लगने से घिसने से आग पैदा हो जाता है, वायु एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जाता है तो घटों से आग पैदा हो जाता है, और पानी पानी में मिलने से आग पैदा हो जाता है, पत्थर पत्थर में मिलने से आग पैदा हो जाता है। ऐसे ही एक तो गिरोहिणी और सबसे सुकट पराग में आकर के और निंदा सुनी, आज उनकी गिरोह की अग्नि प्रकट होकर के शरीर जल के खाक हो गए, किंतु फिर भी ध्यानस्थ हो गए समाधिस्थ हो गए। अब वो पार्वती देवी वो देवी हिमालय के घर में कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया, पार्वती के रूप में वहाँ तपस्या कर रही है, कितना घना घोर तपस्या किया, आराधना किया, बड़ी हो गई, पिताजी ने कहा शादी करूंगी, बोले नहीं, समस्त देवता लोग आए राजी नहीं, नारद जी आकर के जैसे आए हिमालय ने बोला हाथ देखो, हाथ देखा, बोले इसके पति तो असमुद्ध पर सकते है, साधारण छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत कुछ सुनाया हिमालय को, हिमालय सुनकर के बहुत प्रसन्न है, किंतु ऐसे मिलेंगे कहाँ व्यक्ति, ये नहीं कहा कि भोलानाथ शिव जी इनके पति होंगे, कि पार्वती देवी को गोपन में कह दिया कोई भी आए विष्णु आए तुम सभी मत करना, कोई भी आए। फिर सब लोगों ने पार्वती जी की तपस्या से बड़ा भयभीत हो गए, देवता लोग विष्णु से प्रार्थना की विष्णु आकर के उनको शिव जी को तपस्या से ध्यान से समाधि से उनको अलग किया। कैसे? बोले ये असुर इतना बढ़ गया आपके वरदान पा करके, इन असुर को तो कोई भी मार नहीं सकता, इसको आप कोई मगर तो इस असुर को ध्वंस करने के लिए आपको थोड़ा उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल से शिव जी को तो ध्यान छोड़ाया, और ध्यान छुड़ाने के बाद शिव जी को जैसे जैसे राजी कराया कि आपको विवाह करना पड़ेगा। तो आज के राष्ट्र में शिव जी समस्त बरा के लेकर के और ब्रह्मा विष्णु के साथ आ जाए। आने के बाद पहला प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर बीत गया, तीसरा प्रहर में जाकर के ब्रह्मा जी मंत्रवादि के साथ विवाह रखे हैं। इसके लिए इसका नाम पड़ा शिवरात्रि। अभी बात आया, जब ऐसे बात है शिव के विवाह के दिन है तो वैष्णव लोग इस प्रताचरण को क्यों करे? वैष्णव लोगों के लिए कोई व्रत नहीं है, ये शिव जी के शादी के दिन व्रत क्या हो? तो बोलते नहीं, वैष्णव के कुछ विचार है, बहुत सूक्ष्म गोला रहस्यमय है। क्या है कि मधुमा एक शब्द है, मधुमा कब, मधुमाश कब आता है, किससे मधुमाश कहते हैं? बसंत ऋतु को, चैत्र और फागुन, ये दो मास मधुमाश है। क्यों? इससे बहुत तत्व विचार आलोचना है, किंतु इसमें समझ में आना चाहिए कृष्ण के बसंत प्रयास इस समय हुई। शिव जी पंचायती राज में प्रवेश नहीं किया और न उसके लिए उत्कंठित चित्त। शिव जी सब तत्व जानते हैं, सुखदेव जी गोस्वामी पूरा भागवत को शिव जी के अंदर श्रवण किया, तत्व अभिज्ञ है, सब समय भगवत रस में डूबे हुए हैं, दुनियादारी की शुभ बुद्धि नहीं। वो इस मधुमास में आकर के कहां पर वृंदावन के कोने में ईशान कोने में आकर के काटते हुए खड़े हैं, पूर्णिमा देवी के निकट प्रार्थना की, योगमाया के निकट योगमाया देवी देखा आज शंकर जी शिव जी कैलाशपति आज ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं और ब्रज का कुछ सेवा भी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कृपा पूर्वक उनको ब्रह्म कुंड में स्नान करा दी। आज क्या किया, गोपी शरीर प्राप्त की, गोपी शरीर प्राप्त करते क्या होता है, तो रात्रि में रात शुरू हुई किंतु समस्त गोपियां आकर के बोली बड़े सुंदरी है नवेली, आई कहां से, इसके पति का नाम क्या है, इसका हसन कौन है, कौन से गांव के है, इसे सास ससुर कौन है, परिचय दो, बोल नहीं पा रहे, जवान से कुछ शुद्ध नहीं निकले, एक गुच्छा लगा दिया और दूसरे ने हाथ खींच दी, तीसरे ने उनके कंचुली का हटा दी, देखो तो ये गोपी कैसी है, इसके शरीर में कृष्ण के हाथ लगा की नहीं, ये की अनुला की प्रोड़ा या क्या रूड़ा, कैसे है ये, विभिन्न प्रकार से गोपियां चिन्हों को ढूंढने लगी। इतने अचानक जोगमाया देवी आ गई, पूर्णिमा देवी, बोला इसे कुछ मत बोले, छेड़ो मत, ये नई नवेली है, इसको मैं जानती हूँ। तो बोले गोपी रूप धारण किए हुए शिव जी को, ए इन लोगों की चरणों की वंदना करो, इन लोगों की स्तुति करो, ये तुम्हारा ईश्वरी है, और वो नम्र विनयी होकर के सबके निकट में प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे उनको रात्रि के तीसरे जाम में जाकर के उनको अधिकार दिया, ठीक है ये ईशान कोण में बैठना, यहाँ से ही रात का दर्शन करना, अंदर मत आना, और कभी कृष्ण तुम्हारे पास जरूर आए जाएंगे, और इस ब्रज में कोई प्रवेश करेगा तुम उनको अधिकार दोगे, सेवा का अधिकार दोगे। इसलिए वैष्णव जन जिनके अंदर में लालसा है ब्रज सेवा की, ब्रज भाव की, उस गोपी भाव की या गोपियों की रिपा पाने की, तो रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं ब्रज विलास पद में वो निश्चित रूप में इस गोपेश्वर की आराधना करें। तो बोलते हैं गोपेश्वर कैसे हुए, यदि गोपियों के ईश्वर हो तो गोपेश्वर हो जाएंगे या कैसे हो जाएंगे, हो पुरुष भाव आ जाएगा फिर तो बस अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं गोपियां ही जिनके ईश्वरी गोपियों ने उनके नाम दे दिया, जा तुम्हारा नाम आज से गोपेश्वर है, तुमने पूर्णिमा देवी ने नामकरण की गोपियों ने समर्थन दी, जब से ये वृंदावन में विराजमान है। तो आज के दिन में समस्त गौड़ीय वैष्णव जन उनदादी प्रेमी भक्त वो लोग इस स्थिति को पालन करते हैं, किस प्रकार से पालन करते हैं, जैसे सिद्धिया की प्रतीक्षा की और उस ब्रज में प्रवेश के अधिकार मांगे और नया आत्मस्वरूप सिद्धि की मांग। तो जिन लोगों की स्वरूप सिद्धि की आवश्यकता है, जिन लोगों की ब्रजभाव की ब्रज सेवा की लालसा है, तो आज वो भी सिद्धि जिनका प्रार्थना करते हैं। तो बोलेगा खाने का पीने का और लेने का देने का ये छोड़ने से हो जाएगा, तो बोलते नहीं, वहां पर बताया कि आराधना सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात आराधना सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात परतरम देवी तदियानम समर्चनम। आराधना में सबसे श्रेष्ठ आराधना है विष्णु की, किंतु उससे भी एक श्रेष्ठ और चीज है, क्या तदीय तदीय वस्तु की आराधना। अब तदीय आराधना में तदीय कौन है, एक तदीय होता है एक मध्य होता है, मध्य से भी तदीय अधिक प्रिय है, मध्य निजीजन होने पर भी उनके आश्रय में उनके अनुगत्य में उनके सेवा सत्व में जो विराजमान है वो जरा प्रिय है। तो आज दिखा रहे हैं शिव जी एक तरह से विष्णु तत्व है, सदाशिव स्वयं विष्णु है, किंतु फिर भी शक्ति तत्व होने से उनका व्रताचरण नहीं होता है, शक्ति की व्रत नहीं होता है, राधारानी के अभिव्यक्ति में व्रत नहीं होता, गुरु के लिए व्रत नहीं होता, किंतु गोपन तत्व यह है क्योंकि विष्णु तत्व उसके लिए व्रत करते आचरण करते हैं है? ये नहीं, भक्त लोग उस स्थिति की आराधना करते हैं दिन रात जो जुड़ गए, आज इस शरीर की सेवा कुछ नहीं करना है, इंद्रियों की सेवा नहीं करूंगा, एकादशी जैसे निजा निरुम उपवास करते हैं, इस प्रकार से अपने स्वरूप सिद्धि के लिए आज मैं इस मन और बुद्धि इंद्रियों के कभी भी कुछ सेवा नहीं करूंगा, संपूर्ण से प्रार्थी होकर के आज प्रार्थना करूंगा, जरूर मुझे ये कृपा मिलेगी। ये विष्णु तत्व देख करके व्रत करते हैं नहीं, भक्त देख करके व्रत करते हैं नहीं, एकादश स्थिति की तरह एकादश स्थिति जैसे कृष्ण की शक्ति ऐसे ही आज ये रात्रि जो है शिवरात्रि अर्थात शिव जी के जो स्वरूप की प्रकट के दिन है। तो देखो कौन से पुराण उपनिषद से ले आए, तो मैं भी कहूँ कि कौन से पुराण उपनिषद में तुमने प्रमाण कराया कि शिव गोपी शर्मा देव और दिन प्रकट हुए, कोई प्रमाण दे सकता है किस दिन प्रकट हुए, साफ के समय प्रकट हुए, किस समय प्रकट हुए, किंतु है प्रमाण है मधुमास में प्रकट हुए इतना उल्लेख है। तो वहां पर जो इशारा दिए इंगित दिए हमारे गोस्वामी वर्गों ने, इसलिए सनातन गोस्वामी प्रतिदिन नियम करके गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जाते गोपेश्वर, जब शरीर चल नहीं रहा शिव जी बोलते हैं ओ तुम तो हमारे पास रोज आते थे और किस लिए इतना मित्रता, तुम आकर के मुझे रास पंचायत दाई जो पंच प्राण महा वो मुझे सुनाते, जो मैं खुद ही इसके लिए तड़पता, कृष्ण लीला संवरण करके नित्यल्या में चले गए नित्य वृंदावन में, अब मैं अकेला मेरे छोड़ मेरे को छोड़ गए, राम गए तो हनुमान जी को छोड़ गए, कृष्ण गए तो ब्रज में मेरे को छोड़ गए, मैं विरह में तड़प रहा था, ओ हे सनातन तुम आकर के मेरा इस हृदय की व्यथा को दूर किया,
क्यों?
सनातन गोस्वामी, गौड़ीय वैष्णव का पांच प्राण है, गुप्त गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, बेनु गीत, रास गीत, ये महाप्राण पांच प्राण है। एक दिन कोई वैष्णव ऐसा नहीं है जो रूपानु का भजन करने वाले, रागानु का पद्धति में जाने वाले, जो कि वो गोपी गीत का उद्धार न करे और उसके कीर्तन न करे, भ्रमर गीत का कीर्तन न करे, युगल गीत का कीर्तन न करे, रास गीता को याद न करे, फिर वैष्णव ही नहीं है, वैष्णव पदवाच्य नहीं है। वो अभी खारिज है, बहुत दूर है, वो अभी प्रवेश नहीं किया है महापुरुष के विचारधारा में। उनको विषय की विषय की कुत्ता उसको काट रहा है और विषय बीच उसको जला रहे हैं और तीनों ताप से दग्धीभूत होकर के अभी छटपट कर रहे हैं। वो अभी वैष्णव राज्य में प्रवेश नहीं किया, अभी कनिष्ठ अधिकार में भी नहीं है। यहाँ तक हमारे वैष्णवों ने खारिज कर दी। कहाँ खारिज किया? वो श्लोक में खारिज किया जहाँ कृष्ण थी ज्योतिर मनुषा दिए। प्रणाम उच्चारण करते हैं तो मन के द्वारा आदर करो, प्रणाम करने की विधि नहीं दी। दीक्षा से प्रणतिष्ट, जिसका दीक्षा हो गया, संबंध ज्ञान हो गया, ये समझ लिया कि मुझे करणीय क्या है, संकल्प ग्रहण किया, प्रतिज्ञाबद्ध हुए, मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मेरे किसी से लेना देना नहीं है, प्रतिज्ञाबद्ध हो गया, संकल्पबद्ध हो गया। जैसे मैंने बोला आदमी कथा में कि पति सती स्त्री बिना पति को खिलाए कभी जीवा के पानी के बूंद तक नहीं देती है, पति की बिना सेवा किए करते नहीं। महापुरुष जी ने सुनिश्चित कर दिया, जीवा लालच जैसी उनकी जाए, कृष्ण उधर पराया कृष्ण ही पाए। जो जीवा के लालच से चाटनी चाटने के लिए प्रभु को छोड़कर झूमते, शिष्य छोड़कर के जहाँ तक कुत्ता के राति घूमते हैं अपने चटपटी और अचार चाटनी चाटने के लिए, तो बेच्चा है उसका कृष्ण उधर पराया होता है, उसका काम रोग वृद्धि व्यक्त होता है और उधर रोग वृद्धि व्यक्त होता है, वो भजन राज्य में प्रवेश नहीं किया। इसलिए हमारे श्याम सुंदर जब भी चरणों में स्थान दिया, उनके उचित से मुझे दास हूँ, जो उनको दे सकते हैं इतना ही हम उनके दासानुदास उचित से ग्रहण करेंगे। विचार दिया इसलिए बताया, शिव जी बताते हैं ओहो तुम तो घोड़िया हो, अर्थात श्रीमती जी के प्रियजन परिकर महाप्रभु जी ने अपनाया उन्नत उज्जवल रस सर्वोक्ति श्रीयम जो परम परंपरा कक्षा वो चीज तुम्हारे अंदर में रख दिया। तुम हमारे प्रति कृपा पर्वत करके प्रतिदिन मुझे ये सब प्राण का संचार किया, जीवा तुम हमारे लिए है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसा करो, कोई उपाय करो, मेरे लिए भी कुछ नजदीक में स्थान दो। सनातन गोस्वामी मदन मोहन में रहा करते, शिव जी चल चल करके बोले मैं वृंदावन के बीच में आ जाता हूँ, तुम्हारे नजदीक आता हूँ। कहाँ? बीच में बनखंडी के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए सनातन गुस्से में आएंगे, राजाम दर्ज के दर्शन में जाएंगे, शिरा कुंज में जाएंगे और रूप से मिलेंगे, जीव गोस्वामी से मिलेंगे, जो रोज मुझे मेरे पास जाकर के बैठेंगे। इसलिए ततो दुस्संग मुत्सृज्य शत्रु सज्जे सुबुद्धिमान संत सिंगंती मनोवैसंग उत्सिधि। साधु कैसे होते हैं, किसे कहते साधु? मैंने पहले बताया कृष्ण के आस्वादन देखकर जो बन जाते हैं उसे साधु कहते हैं। सब विचार अवलंबन किया, सब गुण अवलंबन किया, सब जो परदेव उसके सत्ता से प्रतिष्ठित हुए, समस्त सब उनके अंदर गुण और वर्तमान हो गए, ऐसे व्यक्ति कृष्ण का आस्वादन योग्य साधु है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दुस्संगों को परित्याग करा करके अपने मन और वाणी तलवार के द्वारा हटा करके उस व्यक्ति को क्या करते हैं, दुस्संग से बचा करके स्वस्थ बना देते हैं, ऐसे साधु की महिमा है। तो शिव जी बिंदा देते नहीं होते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मुझे इस जगत में सत्संग मिले, सनातन गोस्वामी ऐसे व्यक्ति मैंने देखा, आज आप कृपापूर्वक मुझे संग दिया। इसलिए सनातन गोस्वामी लिखते हैं हरिगोस्ती विलास में, यदि कोई एकांतिक वैष्णव यदि कोई यदि शिव जी का व्रत न भी करे तो सब हमें क्यों, वो तो रासलीला में ब्रज भाव में प्रवेश कर गए, अब वो प्रार्थना न करे शिव जी से कोई बात नहीं, किंतु साधारण साधक के लिए क्या बतलाया, एकांतिक नहीं करे, हम एकांतिक हुए कि नहीं सोचे, जब नहीं हुए तब उनसे प्रार्थना करने के लिए बाध्य है, नहीं करते हैं प्रत्यवाय है दोष होगा। इसलिए महाराज के सानिध्य में रह करके बहुत बार बहुत दिन ऐसे भी जाते थे कि अब महाराज जी अब मैं दो जने बस करता हूँ, सुबह को भी और न खा लेता, बहुत हुआ और खटपट भी बहुत हो जाता, महाराज उत्तर नहीं देकर चुपचाप रहते, किंतु किसी समय वृंदावन में मैं महाराज जी से कुछ अपने बहुत गंभीर भावों को प्रकाश करते हुए देखा, और वो भी इन्हें गिने कोई नहीं, मैं इस भाग्य में ही था सकती, किंतु देखा मैंने किसी से महाराज बड़े सख्त हो गए, एक बिल्कुल पक्का नियम कर दिया था, कोई माने न माने, भक्त जी मानेगा कल्याण होगा, दुष्संग जाएगा और कुछ रागानुगा मार्ग में वृत्ति आएगा, किंतु भक्त जी नहीं मानेगा तो पुस्तक करेगा और तुर्क हो जाएगा। किंतु साधारण जगत में जो शिवरात्रि स्थान करते हैं ये और हमारे वैष्णव के शिवरात्रि एक नहीं है, तो लोग शिव जी को जाकर के भूषा चढ़ाते हैं, बेलपत्रा दूसरा और फूल दूसरा फूल और अकंद अकवान ये सब फूल चढ़ाते हैं, वैष्णव ऐसा नहीं करेंगे, वैष्णव के लिंगम है भगवान के चरणामृत और जैसे भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव का भोग लगता है, वहां से समस्त भोग आता है शिव जी के मंदिर में भुवनेश्वर में, पूरा रास्ता खाली होकर के दोनों तरफ सिपाही खड़े हो जाते हैं, प्रसाद आता है भुवनेश्वर मंदिर में, 3 बजे से 5 बजे तक भोग लगता है, उस समय कोई दर्शन दर्शन नहीं होगा, फिर वो भोग जाता है, पहले चरणामृत से उनका अभिषेक होता है, तो वहां पर प्रसाद शिव जी ग्रहण करते हैं, और ऐरे गहरे भूत प्रेत उनको भोग लगाए शिव जी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, कौन खाएगा, भूत प्रेत खाएगा, बेताल राष्ट्र गंधर्व किन्नर जब तक खाएगा, शिव जी ग्रहण नहीं करते, शिव जी केवल भगवत प्रसाद खाते हैं। तो इसलिए आज के दिन भगवान के चरणामृत भगवान के प्रसादी माला भगवान के प्रसाद लेकर के शिव जी को दो, शिव जी प्रसन्न होकर के ऊपर बरम दूंगी मैं भर दूंगा ऐसे नहीं नहीं, तुम हमारे हृदय के बंधु हो, आज मेरे ऊपर में तुम्हारा कृपा है, तुम आज मेरे को भगवत प्रसाद दिया, शिव जी उनको परम मित्र बना करके और खुद जो दासत्व हृदय में भावना है वो दासत्व वृत्ति दे देंगे। इसलिए आज गोड़े वैष्णव के विचारधारा के अनुयायी इस शिवरात्रि वैष्णवों के लिए महान शिक्षा